हम निर्दलाधिकार की गाथाएं शुरू होती हैं। पहली गाथा है 193। ओ विभोग मिंदिम दब्बान मचेदान मिदराणम जम कुण दिशम दिट्ठी तम सब्बम निर्जर निमित्तम। इसकी उत्थान का जो लिखी है अपन ने, उसमें ये लिखा है कि ये द्रव्य निर्जरा का स्वरूप है। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, ऐसा लिखा है ना पिछले पेज पे, देखो पीछे के पेज पे। अरे अपने अभी अब मंगलाचरण नहीं हुआ ना, हाँ तो गाथा कैसे शुरू कर रहे हैं अपन। कल पढ़ा था ना, ये पढ़ो। रागाद्या सविरोध तो निज धुराम सोमवार के बाद निर्जराधिकार है। वो कह रहे हैं कि जब तक सोमवार नहीं हो तब तक निर्जरा से कोई लाभ नहीं है। वास्तव में वो निर्जरा है भी नहीं। दिक्कत यह है कि जो निर्जरा नाम का तत्व है, सात तत्वों में, वो कर्मों का जो झड़ना उदय में आकर ऑटोमेटिक, उसको भी दुर्भाग्य से निर्जरा कहते हैं। इसके लिए लिखा ना पंडित दौलत राम जी ने, निज काल पाए विधि सरना दतासों निज काज न सरना। अब आगे एक पंक्ति में नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि उसकी लंबी व्याख्या करनी पड़ेगी, है ना। यहां ये कह रहे हैं कि वो अपने आप कर्म उदय में आते हैं तो वो खिड़ ही जाते हैं, उनको निर्जर बोलते हैं, झड़ना झड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो वास्तव में निर्जरा तत्व नहीं है, यहां उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं कि जब तक संवर नहीं हो तब तक निर्जरा का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कर्मों का आना नहीं रुके तो फिर उसको झड़ने से फिर नए बन जाते हैं। वो पुराने झड़े और उसके बदले में नए नहीं बने तो वास्तव में वो निद्रा हमारे काम की है। नीचे की पंक्ति में ऐसा लिखा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दरसावे, ऐसी पंक्ति है ना कि हम तपस्या करेंगे और उसे खूब कर्म झड़ जाएंगे और उससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए लोग उपवास आदि को तपस्या मानते हैं, भाई क्रियाओं को, और उसमें करने को समझते इससे कर्म खिल रहे। धूप में बैठ गए उसको मानते हैं तपस्या और उससे फिर कर्म खिल जाएंगे ऐसा मानते हैं, और वास्तव में तो उसे पसीना खिलता है। कर्म के खिलने का उससे दूर का भी रिश्ता नहीं है। फिर शास्त्र में उन्हें तब क्यों कहा है और फिर हमारे मुनिराज ऐसा करते ही क्यों हैं? वास्तव में भी कुछ नहीं करते हैं, हमने बहुत गलत समझा है। होता क्या है कि जब उन्हें परद्रव्य की पराधीनता स्वीकार नहीं है तो जो अनुकूलता प्रदान करने वाले संयोग हैं वे तो बुद्धिपूर्वक जोड़ना पड़ते हैं और उनमें प्रयत्न भी लगता है और लौकिक दृष्टि से कहें तो पैसा भी खर्च होता है और भी साधन जुटाने पड़ते हैं, फिर उन साधनों को संभालना भी पड़ता है। क्योंकि अभी हमने एक दफे कोई चीज चद्दरा बिछा लिया, चटाई बिछा ली, अब द्वारा चटाई वहीं छोड़ देंगे तो द्वारा चटाई कहां से आएगी, तो चटाई को संभलवाना पड़ेगा और फटेगी गलेगी तो कोई दातार खोजना पड़ेगा। वो वास्तव में कोई पराधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कोई परिग्रह उनके पास नहीं है, नहीं रखते वो, इसलिए उनको वैसे संयोग सहज ही मिलते हैं। कैसे संयोग? जमीन होगी, उस पर कोई बिछाने की चीज नहीं होगी। अब गर्मी सर्दी की बात है, जैसे मैं अभी कह रहा हूं धूप में पसीना खिलता है, तो धूप में एक तो ऐसा होता है कि वे जब समाय करने बैठे थे तब वहां धूप नहीं थी, और अब समाय डेढ़ घंटे किए तब धूप आ गई, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बुद्धिपूर्वक धूप में जाके बैठे हों, लेकिन जैसे हम और आप बैठते हैं वैसे नहीं, धूप के लिए धूप में नहीं, क्योंकि वे गर्मियों में धूप में बैठते हैं और सर्दियों में छाया में बैठते हैं। यदि वो धूप के लिए तो सर्दियों में बैठना चाहिए और गर्मियों में बैठना चाहिए, गर्मियों में धूप में क्यों बैठते हैं? तो उसका कारण है कि उनको अपने आत्म ध्यान के लिए एकांत चाहिए, और गर्मियों में छाया हर एक को प्रिय है, तो वहां भीड़ हमेशा होगी, आदमियों की होगी, नहीं होगी तो पशु पक्षियों की होगी, कीड़े मकोड़ों की होगी, वो सारी भीड़ वहां होगी, इसलिए वे उससे बचने के लिए धूप में बैठते हैं। पर्वत की चोटियों पे क्यों चले गए? कहते रही मन तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए कि जहां कोई उठाए, किसी के काम की जगह होगी तो वो उठाएगी। तो अपने आता है शास्त्रों में, एक मुनिराज ने देखी अच्छी बहुत बढ़िया शिला थी नदी के किनारे, तो वो जाके उस पर बैठे, और धोबी आना रोजाना उस पर आके कपड़े धोता था। अब तो समय के में बैठे थे और धोबी ने उनका हटो मेरी जगह है तो मुझे कपड़े धोना है, वो भी क्या करे, क्योंकि दूसरी जगह ऐसी है नहीं जो कपड़े धोए जा सकते हैं। तो पहले ऐसी जगह सोचते हैं, सोचते तो हैं, ऐसी नहीं सोचते, बढ़िया नहीं सोचते, किसी के काम की नहीं हो, जिसके किसी को वहां आने के बैठने की संभावना नहीं हो, कि जिससे संघर्ष नहीं हो, इसके लिए वो ऐसी जगह चुनते हैं। तो पर्वत की चोटियां उन्हें इसलिए पसंद आई कि वहां कौन जाता है, अब धूप रहेगी तो वहां गर्मियों में कौन बैठेगा। ये ऑटोमेटिक मतलब उनके चुनाव का है। नदी के किनारे गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चल रही हो गर्मी, तो वहां तो बहुत भीड़ रहेगी, ये पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं ना। जैसे मंदिर में है तो ऐसी जगह बैठेंगे ध्यान करने के लिए कि जहां लोगों का आवागमन नहीं हो। अब आजकल कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि ठीक ऐसी जगह बैठेंगे कि एक भी आदमी बिना देखे न निकल जाए। चुनाव तो दोनों ने किया, अकृत्रिम जगह जो होगी वो निश्चित नेचुरल होगी, और जो कृत्रिम होगी वो अननेचुरल होगी। वे वनवासी हैं, बगीचा वासी नहीं है। बगीचा और वन में क्या फर्क है? बगीचे और वन में क्या फर्क है? वन को संभार दिया, समझे ना, अच्छे काट छांट कर दी, बैठने लायक जगह बना दी, पानी दिया और उसे बोल लगा, खाद डाली, मैंने ऐसा बना दी, उसी का नाम है उपवन। है तो बना ही, बना ही है ना। अब हमने गृहस्थों ने उपवन बना लिए और साधुओं का वन था। अब वे उपवनों पर यदि साधु कब्जा कर लेंगे तो फिर गृहस्थों का क्या होगा? मैंने स्थिति ये है, मेरे कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो भी संयोग बुद्धिपूर्वक खोजे हैं वो इसलिए ऐसे खोजे हैं जो नेचुरल हैं, कि जहां उन्होंने कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे नहीं आ जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी जो हाथ में लिए रहते हैं ना पीछे, उससे उन्होंने वो जगह थोड़ी साफ कर ली है, और जहां उनका पैर नहीं पड़ना वहां भी साफ नहीं करेंगे क्या? पर हमें तो पूरा जयपुर साफ चाहिए, पूरा हिन्दुस्तान साफ चाहिए है? उनको उससे ज्यादा जगह की साफ की जरूरत नहीं है। यदि ज्यादा बड़ा है तो बढ़ाते जाए तो उसकी कोई हद ही नहीं है। इसलिए भाई वो ये कहते हैं कि द्रव्य जो कर्म बने थे उदय में आकर खिरते हैं वो कोई निद्रा नहीं है, कहते तो उसको भी निद्रा है। अब देखो इस गाथा की दुआता बन पहुंचे कहा है, मेरा माथा गाथा पे सेट हो गया था इसलिए वहां पहुंचता है बार बार। अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले गाथा पे प्रयत्न कर लें फिर इस पे करें, कि कर्म का उल्लंघन करना ठीक नहीं तो नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? रागादि आश्रव अवरोध तो निज धुराम धृत्वा परा संवरा। कहते रागादि आश्रवों को रोध मने से रोकने से, रागादि आश्रव भावों को रोक देने की वजह से संवर ने अपनी धुरा को धारण कर रखा है। धुरा धुरा समझते किसे बोलते हैं? ये बैलगाड़ियों में जो तीन लकड़ियां लगी रहती नहीं ऐसी, उन्हें धुरा बोलते हैं। ये तो आप जानते हो, गांव के जो रहने वाले हैं जब जानते होंगे कि नहीं, वो गाड़ी की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना वो गाड़ी नहीं बन सकती, गाड़ी नहीं चल सकती है। धुरा माने जो परिकर की वस्तुएं हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु माने रीढ़ की हड्डी, अपनी धुरा है जी। रीढ़ की हड्डी अपनी क्या है? धुरा बोलते हैं ना। अब आप और क्या बोलते हैं? धुरंधर विद्वान। धुरंधर माने बड़ा है। हाँ, जो जैन दर्शन की धुरा है उसको उन्होंने धारण किया माने बैल। गाड़ी की धुरा को कौन धारण करता है? माने जो गाड़ी चल रही है वो बैलों के दम पे चल रही है, उसमें जो टुनटुनी बज रही है उसके दम पे नहीं चल रही है। ऊपर बैठा है जो मालिक चाबुक मार मार के बैलों को चला रहा है वो नहीं चल रहा है, वो बैल चला रहे हैं। इसलिए धुरंधर विद्वान माने धुरा को धारण करने वाले, ऐसे प्रयोग होते हैं। फिर संबर ने अपनी धुरा, संबर काय की धुरा थी? मोक्ष मार्ग की, वो मोक्ष मार्ग की रीढ़ की हड्डी थी। तो संबर ने अपनी धुरा को धारण करके आश्रव को रोक दिया, खड़े रहो बस ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे बस, है ना। रागादि आश्रव रोध तो निज धुराम धृत्वा परा संबरा। जो उसके संबर है उसने अपनी ताकत से रागादि आश्रमों को रोक दिया है, पुराने का काम तो उसने निपटा लिया। अब आगा जो पुराने अभी नए आने को तो उसने निपटा दिया, अब कोई नहीं आएगा, लेकिन पुराने तो बंधे हैं ना अंदर है? गेट पर प्रतिबंध लगा दिया, आदमी खड़ा कर दिया, कोई हॉल के अंदर नहीं आएगा। अब वो तो वहां रोड के खड़ा है, लेकिन अंदर घुसे आए जो पहले उनको क्या करे? तो वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा और वो यहां से निकालेगा कि भाई साहब बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए। क्यों वो आ जाए तो वो वहां से चालू हो जाए, निकालने का क्या मतलब? ये कि निकलेगा चार घुसेंगे। तो आगामी कर्मागामी समस्त मेव भर तो दूरान निरुद्धन सता। आने वाले कर्मों को उसने दूर से ही रोक दिया, इसने संबंध ने। अब प्रागबद्धम जो पहले के बने हुए कर्म हैं उनके लिए खपाने के लिए ये निर्जरा तैयार होकर आ गई है कि ये काम मैं करूंगा। उस संबंध ने वहां गेट पर रोक दिया आने वालों को, और निर्जरा ने अंदर में आए हुए लोगों को कर्मों को निकालने की व्यवस्था की। कहते ऐसी जो निर्जरा है जो ऐसी ज्ञान ज्योति जो सुमर और निद्रा को पैदा करती है वो रागादि के द्वारा मूर्छित कैसे हो सकती है? यदि वो ज्ञान ज्योति रागादि के द्वारा मूर्छित हो जाए तो ये काम करेगा कौन? क्या सारा काम तो ज्ञान ज्योति के माध्यम से होना है। तो इस तरह उन्होंने ज्ञान ज्योति को याद किया है। देखो इसका अपन पढ़े, आगामी बंधन अरे देखिए वीर रस का काव्य है, वीर रस, और इसको चित्र काव्य भी कह सकते हैं। चित्र काव्य जानते कैसे बोलते हैं? कि जिस कविता को पढ़कर चित्रकार सुंदर चित्र बना दे, हर आदमी के दिमाग में एक चित्र खड़ा हो जाए, है ना? ऐसा गेट बना हो, सुंदर तैयार खड़ा हो, किसी को भीड़ आ रही हो, उसे रोकने रोक रहा हो, तो चित्र बन जाएगा कि नहीं? निद्रा अंदर भागो 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 भगा रहा हो तो निद्रा का बन जाएगा ना? चित्र काव्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन माना जाता है, कोई बता सकता है? तू मत बोलना, बाकी से कह रहा हूं, तेरी इज्जत रह जाएगी। मेघदूत, मेघदूत सर्वश्रेष्ठ चित्र काव्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हर छंद पर एक चित्र बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता नहीं, बनाए गए हैं। जब वो मेघदूत छपा है जहां बढ़िया तरीके से, तो हर एक छंद पर एक एक चित्र बना दिया बगल में, ऐसा चित्र है। उस कवि के दिमाग में ऐसा चित्र आया होगा तब उसने ये बात लिखी, समझे ना? अभी ऐसी चित्र प्रतियोगिता हो सकती है, तुम्हारी हुई थी ना अभी कौन शाकाहार की दीपावली की, ऐसी इस पर भी हो सकती है। लोग अब आगामी बंधन रोकने के सन्नाद हो, ये ज्ञान ज्योति कभी भी मूर्छित नहीं हो सकती, एकदम तैयार है वो। क्यों? तो उसे समर के माध्यम से आगामी कर्मों को रोकना है, और निद्रा के माध्यम से पुराने कर्मों को खपाना है। अब मैं पूछूं कि कौन कौन लोग इस पर चित्र बना सकते हैं? आपके दिमाग में कल्पना आ गई हो, चित्रकार ना हो भले ही, ना बना पाए बढ़िया चित्र, लेकिन एक कल्पना आ गई हो कैसा चित्र होगा ये, तो आप समझते नहीं सकते हैं। बताओ हाथ क्या? मैं तो समझ रहा था एक हाथ भी ऐसा नहीं रहेगा जो उठेगा नहीं। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? ये तो बहुत साफ है ना, ये ऐसा चित्र आपको बनाना है, समझ गए ना? दो आदमी चाहिए, हाँ तीन ले दो, एक ज्ञान ज्योति, एक संवर, एक निद्रा, और एक हॉल चाहिए अपने स्मारक भवन जैसा। बस वो अपना आत्मा है, वो हॉल है, और बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो आगे प्रश्न, परम संवर रागादि आश्रव भावों को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके समस्त आगामी कर्मों को परिपूर्ण दूरी से ही रोके खड़ा है। परिपूर्ण, परिपूर्ण माने पर्याप्त, जितनी दूर रोकना चाहिए वहीं उसने रोक दिया है। और जब पूर्वबद्ध कर्मों को जलाने के लिए निद्रा रूपी अग्नि फैल रही है, इस कारण निरावरण होती हुई ज्ञान ज्योति फिर कभी भी रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होगी, सदा अमूर्छित ही रहेगी। अभी गुरुदेव जी इसका अर्थ करते तो कहने को अप्रतिभाती भाव की बात की है, क्षय की बात की है, उपशम क्षयोपम की बात नहीं की है। यद्यपि पंचम काल में ऐसा एक संबंध दर्शन नहीं होता है, फिर भी आचार्य हल्की बात नहीं करना चाहते हैं, अप्रतिभा भाव से ही वो बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ये व्याख्यान उनका होगा। किस गाथा पर गुरुदेव श्री बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, युगल जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, आप चाहें तो ये कर सकते तैयार, लेकिन गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। कल नहीं ना, ऐसी नकल करने वाले तो बहुत हैं, हिंसा भाषण की करते हैं, इसकी करते हैं ना कर करके, लेकिन एक बिल्कुल नए विषय पर आपको दिया जाए सब्जेक्ट और फिर कहा जाए कि इसके बारे में फला आदमी कैसे बोलेगा और उसको आप बता दें तो आपकी स्टडी सच्ची है। हमारे गुरु जी थे मक्खन लाल जी, वो ये कहा करते थे कि विद्वान किसे कहते हैं, विद्वान की परिभाषा मैंने यहां कही तो होगी लेकिन बहुत पहले कही होगी कभी, कि जिसके बारे में ये जगत, जगत में जो उसका जगत है, ये पहले से ही जानता हो कि इस सब्जेक्ट पर ये प्रकरण आएगा तो वो क्या कहेगा, बिना बताए ही सारी दुनिया जानती हो पहले से, उसका नाम विद्वान है। माने उसके जीवन की रेखाएं इतनी स्पष्ट होना चाहिए समाज के सामने, क्या कि हर आदमी जो जरा भी बुद्धिमान है कि वो जाने का ये मामला आया है सामने, तो इसके बारे में यदि उससे पूछने जाएंगे तो वो ये उत्तर देगा, और उसको विद्वान कहते हैं जिसके बारे में उसकी रेखाएं बहुत अत्यंत स्पष्ट हों, उसका थिंकिंग सारे जगत के सामने अत्यंत स्पष्ट हो, उसे विद्वान कहते हैं। हमें बताया करते थे कि मतलब सचमुच उनके बारे में ऐसा था, ये मामला आया है तो मक्खनलाल जी क्या कहेंगे, ये सारा देश पहले से ही जानता था, कहते भी वही थे। फिर वो सही होता था, गलत होता था, क्या होता था, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन उसका एक विचार होता है ना, उस विचार की बात करते हैं। देखो इस कलश में यह बताया गया है कि आगामी कर्मों को तो संबंध ने रोक दिया और पूर्वबद्ध कर्मों को निजरा निर्मूल कर रही है। इस प्रकार समस्त कर्मों का अभाव हो जाने से ज्ञान ज्योति ऐसी प्रकाशित हो रही है कि वह फिर कभी भी मूर्छित नहीं होगी, सदा जागृत रहेगी। आगे ना इसमें केवल ज्ञान की बात है, है सम्यक ज्ञान ज्योति अभी, लेकिन वो केवल ज्ञान में परिवर्तित होगी, माने जोर नु छायक की बात है। देखो यहां आचार्य देव कह रहे हैं कि संबर अपनी कार्य धुरा को पूरी तरह संभाल कर खड़ा है, तात्पर्य यह है कि संबर अपना कार्य करने के लिए कमर कसके तैयार है। संबर का कार्य आगामी कर्मों को बंधने से रोकना है, संबर अपने इस कार्य को संभल कर संपन्न कर रहा है। इसी प्रकार निर्जरा भी पुराने कर्मों को काटने में जमकर लगी हुई है ना। इस प्रकार जब नए कर्म तो बंधेंगे नहीं और पुराने कर्म सब नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष होना निश्चित ही है ना। मोक्ष होने पर ज्ञान ज्योति सदा अमूर्छित ही रहेगी क्योंकि अब उसके मूर्छित होने का कोई कारण ही नहीं रहा। ये पूरा चित्र खड़ा कर दिया ना गद्य में, वो तो पद्य से ही समझ में आ जाता है, आ जाना चाहिए है ना। इस मंगलाचरण के कलश में यही कहा गया है कि संबल ने आगामी कर्मों माने आश्रम को रोक दिया है, निर्जरा पुराने कर्मों को नष्ट कर रही है, इस कारण अब ज्ञान ज्योति सदा ही अखंड रूप से प्रकाशित होती हुई रहेगी। उस ज्ञान ज्योति को यहां नमस्कार किया गया है। देखो बनारसी दास जी ने इसमें बहुत सस्ते में निपटा दिया, बस दो चौपाई एक चौपाई लिख दी है ना, पूरी किताब निकाल दूंगा। पेज नंबर 141, जो संवर पद पाई अनंदे माने वो जैसा उन्होंने पिछले में आश्रम के लिए खड़ा किया था ना समर के लिए जनों खम्भ तोड़ गाड़ो है ना एक चित्र खड़ा कर दिया था है? आश्रम पछाड़ो रन खम्भ तोड़ डालो किया था ना ऐसा इसमें भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने बस एक चौपाई में उस बात को उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि भाई संवर प्राप्त किया तो आनंद की उत्पत्ति हुई पूर्व कृत कर्मों का अभाव किया और अफंद हुए इसलिए अफंद माने बंध से रहित हो गया अब द्वारा नहीं बंधेगा ये बात भी आ गई ना सो नजरा ऐसी नजरा को बनारसीदास बंधन करता है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसी नजरा को बनारसीदास बंधन करते हैं अब अपने आ जाए गाथा पर अपन गाथा की बात कर रहे थे कि इसमें उन्होंने अपन ने लिखा है कि एक दिव्य नजरा का कथन है इनने तो हेडिंग में तो लिखा ही नहीं है हेडिंग दिया ही नहीं है उनने मंगलाचरण के बाद सीधी गाथा लिखी लेकिन ये बात अमृतचंद्र को भी समझ लो खटक रही थी इसलिए उन्होंने अंत में एक पंक्ति डाल दी कि एतेन द्रव्य निर्जरा स्वरूपम आवेदितम इससे हमने द्रव्य निर्जरा के स्वरूप का कथन कर दिया आवेदन कर दिया यहां पर ने यहां से उठाकर ऊपर मतलब बना दिया है उत्थान का इसमें भाई आपको कहां से आ गई उन्हें तो उत्थान का लिखी नहीं अपन ने लिखी ना उत्थान का तो वो उत्थान का कैसे लिखी छाबड़ा जी ख्याल में आई ना देखो मंगलाचरण के कलश के उपरांत अब निर्जरा की मूल गाथाएं आरंभ करते हैं उसमें सर्वप्रथम द्रव्य निर्जरा का स्वरूप बताते हैं अब आपको नहीं मिलेगा ऊपर द्रव्य निर्जरा का स्वरूप यहां से क्यों कह दिया लेकिन अगली गाथा के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि अब भाव निर्जरा का स्वरूप बताते हैं है ना जब उसमें भाव निर्जरा का बता रहे तो पीछे द्रव्य निर्जरा का बताया ही होगा ये अंदाज भी लगा सकते हैं अब दूसरी बात ऐसा देखो ये तो अपन ने छापने में ऐसा कर दिया जो लिखने वाले तो ऐसे ही लिखते हैं कैसे कि ये पूरा लिखते जगह छोड़ते नहीं और वहीं लिख देते ये तेन द्रव्य स्वरूपम आवेदितम अथ भाव निर्जरा स्वरूपम आवेदती तो वो इकट्ठे ही तो लिखा इनको हटा दो बीच का जो रोक टोक है जो पैरा चेंज है फुल स्टॉप है ये वगैरह है ये सब हटा दो और कोम ही लगा के लिख दो उस वाक्य को तो वो ही बात है और ये पद्म परम मलधारी देव ने बहुत किया नियमसार में हर गाथा की जो टीका लिखी उसमें पहली आधी पंक्ति में ये लिख दिया कि इस गाथा में क्या कहा गया है इस गाथा में क्या कहा गया है अब मैंने सब जगह उसे वहां से उठा के ऊपर दे दिया है तो इस गाथा में ये कहने वाले हैं वहां भी उसका अर्थ लिख दिया ए, ए, तो ये शैली आपको ख्याल में रहे ना तो आपको वो समझ में भी आएगा कि कब कैसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए मार्गदर्शन भी मिलेगा क्या किया गया है वो भी समझ में आएगा और क्यों किया गया है वो भी समझ में आएगा तो ज्यादा वस्तु से रूप स्पष्ट होगा देखो अब ऐसी गाथा में ऐसा क्या है जिससे हम ये कहेंगे द्रव्य निर्जरा का स्वरूप है ये समय सार की यही विशेषता है उसमें कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देती है वो चीजें पर हमें चंद्र निकालते हैं देखो सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सभी निर्जरा का निमित्त है अब ये यहां पर वो निर्जरा कौन सी निर्जरा है वो ही जो काम की नहीं है काम की नहीं है वो निर्जरा है क्यों कि उसने चेतन अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग किया तो ये नियम है शास्त्रों में कि उपभोग उपभोग के भाव के बिना नहीं होता समझना, उपभोग किया का क्या अर्थ है बोलो। अपने घर में सब चीजें रखी हैं और अपन ने उसका उपभोग किया, माने क्या किया? खाने की इच्छा हुई तो खाया, पीने की इच्छा हुई तो पानी पिया, तो वो उस इच्छा के बिना संभव नहीं है। तो वो कहते हैं जो भोग नामक क्रिया हुई उसमें उस इच्छा जो हुई वो उसमें निमित्त है, समझे ना। अब वो ये कहते हैं कि वो इच्छा क्यों हुई, कि अपने पुराना कर्म उदय में आया इसलिए, ये कहते हैं। और जब वो पुराना कर्म उदय में आया तो यहां जीव में तो इच्छा पैदा कर गया, भाषा है कर गया, वो धो दो गई इसमें अपने आप, और वहां वो फिर गया। तो अब यहां से द्रव्य निद्रा निकाली दादा समझ जाए कि नहीं जाए। वो जो कहते कर्म उदय में आया उससे हमारे हृदय में भोगने का भाव हुआ, भोगने का भाव हुआ और फिर हमने भोगा। कहते भोगा के नहीं भोगा ये बाद की बात रहने दो, लेकिन जो कर्म उदय में आया वो तो खिर ही गया, फिर वो उसके बाद में ठहर नहीं सकता। इसीलिए तो आश्रय भावों को, भाव आश्रय भावों को वो कहा है ना समय सार में 72-73 का था मैं, कि वो खलु आश्रय क्या है वीर मोक्षण बते है ना, असरण वे असरण है, असरण का जय अर्थ है कि वो कर्म उदय में आया और उसने हमें भाव पैदा हुआ और वो मर गया, उसका मरण नक्की है। अभी देखो वो कितनी खतरनाक बात है, खतरनाक इस अर्थ में कि अभी संयोगों पे लो अघात्या कर्म, अब अघात्या कर्म आया और उससे हमें सामने वो संयोग उपलब्ध हुआ, समझे ना, अब वो कर्म फिर गया, अब वो हमारे पास नहीं रहेगा वो पुण्य पाप जो भी। अब दिक्कत यह है कि बोलो एक समय को संयोग हुआ, अब वो दूसरे समय वो संयोग कायम रहे उसके लिए नया कर्म का उदय चाहिए, कितना महंगा सौदा है। बाजार से हम सब्जी ले आए, अब पैसा दे दिया, अब आराम से खाए पिए, अब जो भी हमें करना हो करें, ये कहते ऐसा नहीं चलेगा। अब वो सब्जी तुमने खरीदी तब पैसा दिया, अब अपने पास रखोगे तो पैसा दोगे समझ आप लोगों की आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, कितना खतरनाक रास्ता है कि हमें जो कर्म के उदय में जो चीज मिली, मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि उधार नहीं मिलता कुछ भी, वो पहले कर्म का उदय आएगा वहां औदेक भाव होगा और कर्म खिल जाएगा। तो औदेक भाव मानू ये भी है संयोग होना, गति वगैरह है ना, औदेक है ना, समझिए ना आपको। अब ये आपको मनुष्य गति मिली तो मिली नहीं, तब तक ही आपको वो कर्म का उदय नहीं खर्च हुआ, बल्कि जब तक ये रहेगी तब तक मनुष्य गति नामक कर्म का उदय खर्च होता रहेगा। और जिस दिन वो खत्म हुआ उसका उदय खत्म हुआ और तुम गए इस काम से, अब उसका हिसाब किताब तो उससे और तुम ये गोलियां खा के समझ रहे हमने इससे बचे। हम बारीकी से सोचते नहीं हैं कितना नश्वर है ये वैभव, ये विचार करो कितना नश्वर है ये वैभव जिसमें आदमी इतना करता है। मैंने जोड़ा है, मैंने सारा इंतजाम किया है, मैंने पूरी व्यवस्था की है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, कहाँ है वो तो उदय में निरंतर 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 तेरे पुण्य खर्च निरंतर हो रहा है और तू उसका था उपभोग करता नहीं क्या? तो हम इसमें उल्टी समझ में होती है पैदा, तो इसलिए हमें भोग लेना चाहिए कि वो आया हमने नहीं भोगा तो वो तुम्हारे 10 घंटा हमारे पास रहा, 10 घंटे तक हमारे कर्म का उदय था जिसकी वजह से वो संयोग हमारे पास रहा, 10 घंटे बाद चला जाएगा और 10 घंटे में हमने उसको नहीं भोगा, दूसरे काम में लग रहे, दूसरी चीजों के वो भोग में ही लग रहे, समझ गए।
तो बस वो तो गई बेकार, वो चला गया बेकार हो गया उसका, आपके भोगने में भी नहीं आया और तुम्हारा जो जमा करता है पैसा खर्च हो गया। तो इसमें से अपन क्या निकालते हैं, तो भोग ही लेना अच्छा है। बहुत बहुत स्पष्ट है ये बात है। आप बाजार से सब्जी लाए, ताजी ताजी सब्जी, आपने डबल पैसा दिए, खाए के लिए ताजी के लिए, अभी अभी उतरी है, अभी पत्ता उसके ऊपर अमरूद पर पत्ता भी हरा लग रहा है, वो भी नहीं सूखा है, आपने लिया ना उसके लिए, अब आपने उसे 24 घंटे रखे ना दिया, कर लिया ना घर में ही बासा, कीमत दी ताजे की तो बासा ही लेना था तो आधी कीमत में आ जाता ना। अरे वहां से ताजा खरीदते ही वो बासा होने लगता है एक एक जगह में। बोला कितना विचित्र हिसाब है, मेरा करुणानी लोग अलग है, होने लगता कि नहीं होने लगता, और चार दिन तक रखे रहो उसे तो फेंकने लायक हो जाएगी, फिर वो भोग के लाए, तो अब भोग कहते वो वस्तु जो हमारा उदय में आई, अब भोग लो तो भोग लो, नहीं भोगो तो नहीं भोगो, नहीं भोगी तुमने तो वो स्ट्रोक में हो जाएगी, ऐसा नहीं है क्या। जब मैंने ये इधर देवलाली में बहुत विस्तार से ये सब बात समझाई तो मोटानी बोले भाई किसका तो मतलब ये हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ, ऐसा होता है तो इसके लिए तो हमको भोग लेना चाहिए, नहीं भोग लेगा फिर मरे बेटा, भोगो भोग भोग भोगो मैंने भोगने का भाव करो, भोगने का भाव करो तो वहां उस टाइप का कर्म उदय में आएगा और नया कर्म फिर बन जाएगा। यानी कितना घाटे का सौदा है, क्यों इस दृष्टि से नहीं देखते करना नहीं हो बारे कि जो यही बंदगी प्रक्रिया तो यही है ना, उदय की प्रक्रिया तो यही है ना है? कैसे क्या करें, अभी तो खत्म हो जाएगी चली जाएगी, मौका मौका निकल जाएगा, ये हो जाएगा वे हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक एक लड़के ने एक कविता बनाई थी तो मैं सुनी थी, तो वो मैंने अभी एक आध पंक्ति रह गई मुझे, उन लड़कों को तो याद होगी कि ये बरसे तो नहा लेना ये बादल जाने वाले हैं, क्या आया तो अन्य के लिए बरसे तो नहा लेना नहीं तो ये बादल जाने वाले हैं। ऐसी कविता मैंने करीब 50-60 साल पहले पढ़ी थी भारतेंदु हरिश्चंद की, भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी है, किसी ने पढ़ा, उन्होंने लिखा था भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी। भैया आज तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो, सुनना हो सुन लो, एक दिन कहानी किस्सों में हरिचंद रह जाएंगे। हरिचंद माने हरिचंद नाम के राजा और हरिचंद नाम के कवि, आपको ये तो पता होगा ना, महाभारतेंदु हरिश्चंद नाम के हिंदी गद्य के संस्थापक कवि हुए हैं। क्या नाम था उनका, भारत के चंद्रमा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उन्होंने वो हरिश्चंद्र था जो धर्म वो सत्यवादा सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसके ऊपर एक नाटक लिखा है हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र की कहानी लिखी है क्या। तो उस नाटक में ये बात आई है भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी, तो दो ही अर्थ निकालते थे शोध हमारे हरिचंद की माने जो हमने हरिश्चंद्र नाटक लिखा है अब उसे तुम अच्छी तरह समझ लो, जो सीखना हो सीख लो, राजा तो चले गए अब आज जैसी कहानी रह गई और हम नाटक लिखते हैं और आप कहानी पढ़ते हो सुनते हो, ऐसे ही एक दिन हम भी चले जाएंगे और हमारी भी कहानी रह जाएगी। वो इसी टाइप का हो गया जो आपने बताया है कि बरसे तो नहा लेना नहीं सर ये बादल जाने वाले हैं। तो ऐसे ही पुण्य के पाप के संयोग से जो भी चीज मिली है वो बहुत क्षणभंगुर है, और जब तक वो रुकेगी क्षणभंगुर नहीं है तो वो बहुत महंगा सौदा है क्या, उसका रहना निरंतर रहना ये बहुत महंगा सौदा है। देखो हमारी तुम की आपस में समझो हर एक की एक दूसरे की अनुकूलता बनी ना किसी कारण से, कल तक तुम हमारा विरोध करते थे और आज तुम्हारे नवनानु क्या भाव हो रहे हो, आज बढ़िया 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 बात कर रहे हैं। तो ये अनुकूलता बनी, वो मुफ्त में नहीं बनी, वो हमारे कोई ऐसे कर्म का उदय, पुण्य का उदय, पाप का जो भी समझ लो। महीपाल मंदेरणा को भमरी देवी की अनुकूलता बनी थी वो पुण्य के उदय से या पाप के उदय से जो भी अनुकूलता बनी वो अनुकूलता वो अधिक काल तक रहने वाली नहीं है। उसके लिए भी आपके कर्म का उदय उस टाइप का चाहिए, वो खर्चा होगा और वो कब खलास हो जाएगा सवाल उसका नहीं, उधर क्या देखता है। सामने वाले से जो अनुकूलता बनी है उधर को क्या देखते हो, तुम अपने अंदर देखो। वो तुम्हारा वो खलास हो जाएगा तो अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदलते देर नहीं लगेगी। बहुत पुरानी बात है, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं। एक फिल्म देखी थी राज कपूर की, और उस जमाने की बात है। तो उसमें क्या था कि एक नेता था और वो भाषण दे रहा था, और राज कपूर ने क्या किया कि वहां पर एक इसने मंजन बेचा, एक रुपए में डिब्बी मंजन की, मंजन की, मंजन की, काला मंजन, दंत मंजन, और दांत वज्र जैसे हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, तो भाषण दे दे करके और एक रुपए में एक डिब्बी वो बेच रहा था, समझिए ना। तो एकदम भीड़ रहा था, उसके यहां से हट हट के उसके पास आ गई, लुट गया लुट गया, मुफ्त में लुट गया, ऐसा बोलता था। तो सारी भीड़ राजा का भाषण सुन के उसके पास आ गई। ये क्या हो गया? तो वो भाषण देने वाला नेता आया कि कौन है जिसने मेरी सारी भीड़ खींच ली। तो कह रहा था ये दांत मंजन जैसा है ऐसा है, वज्र जैसा बनाएगा, जो करेगा वो करेगा। तो उसने कहा नेता ने कि ए भाइयों, इस मंजन में हड्डी का चूरा मिला है। क्या हड्डी का चूरा मिला है? तो एक मिनट में तो एकदम लड़ रहे थे, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, एकदम मामला पलट गया कि हड्डी का चूरा मिला है। तो अरे दीदी, तो वो बोला कसम, मैं कसम खाता हूं अपने माँ की, मैं राम की कसम खाता हूं, इसमें कोयला और ईंट का चूरा और नमक, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो उसने ये बोला तो बोला देखो ये तुमको ईद का चूरा बेच रहा है, कितनी पिटाई हुई। अब मैंने तो उस दृश्य से ये निकाला कि वो तुम्हारा जो पुण्य का उदय था, जैसे इतनी बिक्री हो रही थी और कमाई हो रही थी, वो कब खलास हो जाएगा तुम्हें पता नहीं है। ये गाड़ी दौड़ रही ना पेट्रोल पे, वो पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा और तुम्हारी गाड़ियां सब बेकार हो जाएंगी। बहुतोंगी तो हो गई, पेट्रोल के भाव बढ़ते ही गाड़ियां घर में रखी हैं और वे पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और गाड़ी से स्कूटर पे आ गए। सुनिए, यानी वो पेट्रोल कब खलास हो जाएगी और गाड़ी कहां खड़ी रह जाएगी, ये आप समझ लो। तो ऐसे कर्म के उदय पर भी विचार करो इस दृष्टि से, तो तुम्हें इस जगत की क्षणभंगुरता, अस्थिरता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब ख्याल में आए और फिर तुम इस अनुकूलता पर रंजायमान नहीं हो और प्रतिकूलता से घबराओ नहीं। आता ना कि ये भी दिन न रहेंगे, ये सब बदलने वाले हैं, हैं? क्योंकि वो उस पर संयोग उस पर निर्भर है, और वो इतना महंगा सौदा है, वो इतना क्षणभंगुर है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो इसी अब टीका पढ़ते हैं अपन। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। अभी वो लगता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे विरागी जो जीव हैं उनका जो भोग होगा तो गारंटी से निर्जरा होगी। कहते घबराते क्यों, कि कर्म का उदय आया, अशुभ का शुभ का, जो भी संयोग मिला, जो भी भाव हुआ, अघात्या कर्म का आया तो संयोग मिला, घात्या हुआ तो भाव हुआ, तो घबराओ मत, वो कर्म उदय निद्रा के लिए आया, वो अजय खत्म होने के लिए आया है, वो अपनी मौत के लिए आया है, वो अपनी मौत लेके आया है, वो मरने ही वाला है। समझिए आप, जो ये सामने वाले ने आक्रमण किया है तो उसे घबराओ मत, वो निद्रा को लेके आया है, वो खिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बात वहां की वहीं खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ने वाली नहीं है। विरागी का उपभोग निद्रा के लिए ही है, विरागी का क्यों लगा रहे, रागी का भी तो है, तो रागी का वो द्वारा बंधेगा नया कर्म, और विरागी का वो नया कर्म नहीं बंधेगा, इसलिए कह रहे कि विरागी का उपभोग है वो निद्रा के लिए ही है। इसलिए जो उन्होंने कहा ना कि ज्ञानी को भोग है वो निद्रा के हेतु है, अब वो हो गया ना भोग, उपभोग कह लो, वो कर्म के उदय को भोगा ना उसने, यानी वो उसको भोगे और नहीं भोगे। देखो दो बात समझना आ रही है कि आपके जो संयोग आपको जो मकान मिल गया बढ़िया, और आपने मकान खरीद लिया और खरीद करके अब फर्नीचर बनवा रहे हैं, अब तो तकलीफ ही तकलीफ उठा रहे हैं ना, अब साल भर बाद बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा जब आप रहने जाओगे, है ना। तो वो प्रति समय जो मकान आपको मिला फर्नीचर बन रहा है वो आपके पुण्य का उदय, उसमें खर्च हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो भोगेंगे ना हम कि भैया भोगने के पहले ही कहीं वो चला ना जाए, ऐसा कोई घाटा आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, क्यों कि फिर वो आप उसमें जा ही नहीं पाओ और उसके पहले ही वो आपके हाथ से निकल जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो कहते थे भोगो और चाहे नहीं भोगो, वो तो जाने ही वाला है, ये निद्रा के लिए का मतलब समझिए ना, आप भोगो और चाहे नहीं भोगो, हैं क्या मुझे बचा के रख लेंगे, नहीं बचा सकते हो, इतना कीमती है तो हमें खर्च नहीं करना चाहिए ना। मोटानी जी ने ऐसा मेरे से कहा था घर पे बैठे खाना खाते वक्त, मैंने कहा भैया चाहे तुम भोगो और चाहे नहीं भोगो वो तो जाने वाला है, वो तो क्या जाने, बिना भोग ही जाए तो भोगे, भोगोगे तो नया बांधोगे, बोलो क्या करना, नया कर्म बनेगा। ये तो ऐसे लड्डू हैं कि खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है, भोगे सो पछता है और ना भोगे सो पछता है, तो क्या करो, कहता रिश्ता रहो, जो होता है वो नहीं, भोगे तो भोगे तो नहीं भोगे तो नहीं भोगने दो, यही ऐसे ही ज्ञानी करते हैं। वही किया ना भरत चक्रवर्ती ने, वही किया आदिनाथ ने, वही किया बाहुबली ने, और वही किया वृषभ सेन ने, उसमें क्या है, किसी ने भोगा किसी ने नहीं भोगा, एक ही घर में सब उदाहरण, क्यों है कह रही, एक ही घर में सारे सम्मत ऋषियों के ऐसे उदाहरण हैं कि भरत चक्रवर्ती जैसा इतने कितने काल तक, जब तक केवल ज्ञान होने का समय नहीं आ जाए उसके अंत मुहूर्त पहले तक उन भोगों में ही लगा रहे, अनंत वीर जैसे ऐसे वैसे दीक्षा लेके चले जाए, क्यों, और वे तो भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए थे ना, फिर तो बोले ही नहीं, नित्य गोद करते हैं आगे, और ऐसे भी उदाहरण है, सारे उदाहरण उसमें उनके उनके में क्यों भरे हैं, दूसरों के क्यों नहीं है, कि राम चरित्र तुम्हारा चरित्र का उस राम में विविधता है, जैसे अपने आदिनाथ के जीवन में विविधता है, इसलिए आदिनाथ का चरित्र बहुत लिखा गया और 23 तीर्थंकरों को छुट्टियों में निपटा दिया गया, वहां कुछ ऐसा है ही नहीं क्या, क्योंकि उसमें इतनी विविधता है कि आपके हर उदाहरण वहां मिल जाएगा, वहां मारी जो भी मिल जाएगा, समझे ना, वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तत्काल क्षण भर में मोक्ष जाने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे, और जीवन भर रहने वाले सब तरह के उदाहरण उसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे यदि हम उसको समझना चाहें सीखना चाहें तो ये अपने गाथा पे बात करी है अभी, इसमें बहुत बढ़िया जयचंद छाबड़ा का भावार्थ है एक पेज का, वो अपन कल पढ़ेंगे, बहुत मार्मिक है।